नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। चुनाव आयोग की टीम आज राज्य की प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों और पुलिस विभाग के नोडल अधिकारियों के साथ करेगी बैठक। भाजपा की चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर हुआ मंथन, आज भी जारी रहेगी बैठक। राज्य के अधिकांश भागों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने कहा आज सुपौल, अररिया और मधुबनी जिले में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना। और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने 7 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क माफ किया। अब समाचार विस्तार से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव स्वच्छ और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आयोग ने अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन कल पटना में राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। इसमें राज्य के 38 जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। उच्च स्तरीय बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कमजोर क्षेत्र की पहचान कर मतदाताओं पर भरोसा मजबूत करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए। आयोग ने सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों की कड़ाई से निगरानी करने को भी कहा है। इससे पहले निर्वाचन आयोग की टीम ने राज्य के 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया और उनके सुझाव लिए। निर्वाचन आयोग के दल में निर्वाचन आयुक्त डॉ सुखबीर सिंह संधू और डॉ विवेक जोशी भी शामिल हैं। भाजपा, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव आयोग को दिए सुझावों में 2 या इससे कम चरणों में मतदान संपन्न कराने का आग्रह किया है। ज्यादातर राजनीतिक दलों ने छठ पूजा के तुरंत बाद यानी नवंबर के पहले सप्ताह में मतदान कराने का आग्रह किया है। कांग्रेस ने बैठक के दौरान निर्वाचन आयोग के समक्ष SIR को लेकर विरोध जताया। कांग्रेस पार्टी ने राज्य के लिए प्रकाशित की गई अंतिम मतदाता सूची में जोड़े गए 21,53,000 मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने और हटाए गए 3,66,000 वोटरों की जानकारी मांगी है। दौरे के अंतिम दिन आज चुनाव आयोग राज्य के प्रवर्तन अधिकारियों, पुलिस विभाग के नोडल पदाधिकारी और केंद्रीय बलों के नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक करेगा। एक रिपोर्ट।
बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग का 2 दिवसीय दौरा आज संपन्न हो जाएगा। अपने दौरे के अंतिम दिन आज चुनाव आयोग राज्य के विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों, पुलिस विभाग के नोडल पदाधिकारी और केंद्रीय बलों के नोडल पदाधिकारी के साथ बैठक करेगा। दिल्ली रवाना होने से पहले आयोग राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक कर चुनाव संबंधित तैयारी की जानकारी प्राप्त करेगा। 2 दिन की गतिविधियों और विचार मंथन के बारे में जानकारी देने के लिए आयोग की ओर से आज दोपहर बाद पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें निर्वाचन आयोग चुनाव संबंधी चर्चा और इससे निकले निष्कर्ष के बारे में मीडिया के प्रतिनिधियों को जानकारी प्रदान करेगा। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में चुनाव समिति की बैठक हुई। इस दौरान विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई, साथ ही क्षेत्र विशेष के सामाजिक समीकरणों और राजनीतिक संभावनाओं पर भी मंथन हुआ। बैठक में मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन पर भी विचार हुआ तथा पिछले लोकसभा चुनाव में पराजित सांसदों और पूर्व सांसदों के उम्मीदवार बनाने को लेकर भी चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पार्टी ने 125 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया। माना जा रहा है कि पार्टी जिला संगठनों से प्राप्त नामों पर गंभीरता से विचार कर रही है। बैठक में बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, सह चुनाव प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। चुनाव समिति की बैठक आज भी जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार करने से पहले 1 करोड़ लोगों से सुझाव लेगी। घोषणा पत्र समिति के वरिष्ठ सदस्य और सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि प्रदेश भर में आज से 20 अक्टूबर तक अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान 1 करोड़ लोगों के सुझाव एकत्रित किए जाएंगे। इसके लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रमुख स्थानों पर सुझाव पेटियां रखी जाएंगी। श्री कुमार ने कहा कि मिस्ड कॉल और ईमेल के साथ ही सीधा संवाद कर लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। राज्य के पश्चिमी भागों से एक ट्रफ लाइन गुजर रही है, जिसके प्रभाव से प्रदेश के दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भागों में विभिन्न स्थानों पर भारी वर्षा की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया और मधुबनी जिले में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा और कटिहार जिले में कई जगहों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के अन्य भागों में भी मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा है कि अगले दो दिनों तक राज्य के अधिकांश भागों में मौसम खराब रहने की संभावना है।
अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी भागों के अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अधिकांश भाग के जिलों के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान सीवान जिले के महाराजगंज में रिकॉर्ड 324.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कई अन्य स्थानों पर भी 280 से 200 मिलीमीटर तक वर्षा दर्ज की गई है। राज्य के विभिन्न भागों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस दौरान अलग अलग स्थानों पर वज्रपात और आंधी बारिश की घटना में 16 लोगों की मौत हो गई। सबसे अधिक 4 लोगों की मृत्यु मुजफ्फरपुर जिले में हुई है, जबकि जहानाबाद जिले में 3 लोगों की मृत्यु हुई है। भारी बारिश के चलते रोहतास और कैमूर जिले में कर्मनासा और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ आ गई है। बारिश के कारण सासाराम शहर में कई गली मोहल्ले पानी में डूब गए हैं। पटना, सारण, सीवान और गोपालगंज जिले में कई गली मोहल्लों में भीषण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तेज हवा के चलते कई स्थानों पर रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिरने के कारण रेल परिचालन भी बाधित रहा। वहीं बेहद खराब मौसम के कारण पटना एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही भी प्रभावित रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुजरात के गांधीनगर से राष्ट्रव्यापी आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में पड़ी लावारिस वित्तीय संपत्तियों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह अभियान लावारिस जमा राशियों की उनके वैध दावेदारों को उचित वापसी सुनिश्चित करेगा।
People don't wonder where they have to go.
लोग उस रास्ते से नहीं जाना चाहते जिस रास्ते से उन्हें जाना पड़ता है। बैंक आज उनके दरवाजे पर आता है, हमारे पास 3 साल हैं। आप जागरूकता पैदा करने के लिए यहाँ आए, आप हम तक पहुँच सकते हैं और आपके अघोषित धन जो बैंक या LIC या SEBI के पास देखभाल योग्य स्थिति में पड़ा है, उसको वापस दिलाने के लिए कार्रवाई की जाएगी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार कौशल और नवाचार पर जोर देते हुए युवा शक्ति को भविष्य का नेतृत्व करने के लिए तैयार कर रही है। प्रधानमंत्री ने 62,000 करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न युवा केन्द्रित पहलों का अनावरण किया। ये युवा केंद्रित पहल देश में शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देगी। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में कौशल दीक्षांत समारोह के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उन्नत ITI के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन PM सेतु का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
PM सेतु योजना की शुरुआत की गई। देश भर में हमारे 1,000 से ज्यादा ITI इंस्टीट्यूशंस को इसका फायदा होगा। PM सेतु योजना के माध्यम से इन ITIs को अपग्रेड किया जाएगा। यहाँ नई मशीनें आएगी, इंडस्ट्री के ट्रेनिंग एक्सपर्ट यहाँ आएंगे, कारुकलम भी आज की और फ्यूचर की डिमांड के हिसाब से अपग्रेड होगा।
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए कई अन्य परियोजनाओं की शुरुआत की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रधानमंत्री ने बिहार में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का भी शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख स्नातक युवाओं को निशुल्क कौशल प्रशिक्षण के साथ 2 साल तक 1,000 रूपए का मासिक भत्ता मिलेगा। प्रधानमंत्री ने बिहार युवा आयोग का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने बिहार के सरकारी विद्यालयों के 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के बीच 450 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति की राशि का डीबीटी के माध्यम से अंतरण किया। कार्यक्रम में नव चयनित 3,942 युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
इस अवसर पर पटना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार देने के लिए लगातार काम कर रही है। अब तक 50 लाख युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जा चुका है।
20 में 7 निश्चय 2 के तहत युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देना तय किया गया और अब तक 10 लाख नौकरी और 40 लाख रोजगार दे दिया गया है। सभी को मिलाकर के 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया गया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी में आयोजित समारोह में मेडल लॉ नौकरी पाओ योजना के तहत प्रदेश के 87 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इसके साथ ही वे बिहार राज्य खेल सम्मान योजना से सम्मानित 812 खिलाड़ियों के बीच 7 करोड़ 43 लाख रुपए की सम्मान राशि वितरित करेंगे। श्री कुमार राजगीर में क्रिकेट स्टेडियम के पवेलियन और क्रिकेट ग्राउंड का लोकार्पण भी करेंगे। इस मौके पर राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने 7 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क माफ कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि इस आयु वर्ग के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क में छूट 1 अक्टूबर से लागू हो गई है और 1 वर्ष के लिए लागू रहेगी। इस निर्णय से देश भर के लगभग 6 करोड़ बच्चों को लाभ मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क संग्रह नियम 2008 में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार वैध और सक्रिय फास्टैग के बगैर शुल्क प्लाजा से गुजरने वाले वाहन यदि नकद का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें अधिकाधिक उपभोक्ता शुल्क का 2 गुना भुगतान करना होगा। यदि शुल्क का भुगतान UPI द्वारा किया जाता है तो आधिकारिक शुल्क का 1.25 गुना भुगतान करना होगा। ये नियम 15 नवंबर से लागू होंगे। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने चुनाव आयोग की टीम के बिहार दौरे से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने इस खबर पर लिखा है, बिहार के ज्यादातर दलों का 2 चरणों में चुनाव कराने पर जोर। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, राजद शासनकाल में शुरू हुआ पलायन, नीतीश ने रोका। दैनिक भास्कर ने मौसम की खबर पर लिखा है, पानी से परेशानी, कई जिले जलमग्न, ठनका से 16 मरे। प्रभात खबर की सुर्खी है, इंतजार खत्म, कल से पटना में दौड़ने लगेगी आपकी मेट्रो। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चुनाव आयोग की टीम आज राज्य की प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों और पुलिस विभाग के नोडल अधिकारियों के साथ करेगी बैठक। भाजपा की चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर हुआ मंथन, आज भी जारी रहेगी बैठक। राज्य के अधिकांश भागों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने कहा, आज सुपौल, अररिया और मधुबनी जिले में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना। और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने 7 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क माफ किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।